हमने सूरह निसा शुरू की और इसमें बहुत अहम टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पहला टॉपिक हमने जो कवर किया वो हमें ये पता चला कि तकवा अल्लाह का इख्तियार करना है और सारी इंसानियत एक फैमिली है, जस्ट वन फैमिली। ये छोटे छोटे जो खानदानों में हम बटे हुए हैं वो पहचान के लिए तो ठीक है, मगर ये याद रखना चाहिए कि ये सारे हमारे ही एक ही माँ बाप की औलाद है। और हमने रिश्तेदारी के ऊपर बहुत ज्यादा बात की थी कि रिश्तेदारी को निभाना। हमने यतीमों के माल की बात की थी कि यतीमों का माल कितनी बड़ी अमानत है इंसान के पास और उसको कितना केयरफुल रहना चाहिए इनके माल के बारे में। यतीम के माल की निगहदाश्त, चाहे उन यतीमों की मां कर रही हो, चाहे उनका चच्चा कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, मगर उसको याद रखना चाहिए कि ये इन यतीमों का माल है, तो इसको उड़ाया ना जाए, इसको किसी और माल में मिक्स करके और फिर उसको खा ना लिया जाए। और फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात मेहर के बारे में पढ़ी थी कि मेहर औरतों को खुश दिली के साथ दिया जाए, और ये कि अगर वो फिर भी वापस कर दे, आदमी को नहीं रखना चाहती तो आदमी फिर ले सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं उसे ले सकता, उसको मजबूर नहीं कर सकता, उसे प्रेशराइज करके उसे माफ नहीं करा सकता। और हमने बहुत अहम बात पढ़ी थी कि सुफहा को अपने माल ना दे दिया करो, कि वो माल जो अल्लाह ताला ने आपके कयाम का जरिया बनाए हैं वो आप उनको दे दें कि भाई जो मर्जी करते रहें, आप उसके साथ लुटा दें या जैसे मर्जी करें। फिर हमने देखा कि मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, दोनों के लिए विरासत में हिस्से हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द के लिए, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है। और हमने बहुत ही खूबसूरत ये बात पढ़ी कि इंसान को डरना चाहिए जब यतीमों के साथ मामलात कर रहा हो ना, तो ये सोचना चाहिए कि अगर इसकी जगह मेरी औलाद हो तो क्या हो, और जो माले यतीम खाते हैं फिर उनका अंजाम क्या है, वो जो खा लेंगे जुल्म के साथ, उनका हक नहीं बनता था, उन्होंने हक मार लिया हुआ इन यतीमों का, अपने पेटों में आग भर रहे हैं वो। फिर हमने कुछ हिस्से पढ़े थे, कौन कौन से हिस्से पढ़े थे आपको पता होना चाहिए, कि एक बेटी हो तो उसका कितना हिस्सा है, एक से ज्यादा बेटियां हो तो उनका कितना हिस्सा है, वालदेन का कितना हिस्सा है अगर औलाद नहीं है मैयत की, और अगर औलाद है तो तब कितना हिस्सा है, और अगर बहन भाई भी हैं तो माँ का कितना हिस्सा है। ज्यादा नहीं है हिस्से जो यहाँ पे बयान हुए, हाफ है, 2/3 है, आप आगे देखेंगे 1/8 है या 1/6 है या 1/3 है, इससे ज्यादा तो कोई और हिस्से हैं नहीं, इन्हीं के अंदर सब घूम रहे हैं। ठीक है, तो इनके हिस्से आपने जुबानी याद कर लेने हैं इंशाल्लाह ताला। आज भी कुछ हिस्सों की बात हो रही है और बड़ी अहम आयात है, क्यों इतनी ज्यादा अहम है इसकी वजह भी आज आपको पता चलेगी। आज आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला औरत जो एक कमजोर मखलूक है उसकी, और अपना हक अक्सर औकात नहीं ले सकती, अल्लाह ताला कैसे उसको उसके हक दिलाता है और उसके हकूक की अल्लाह कैसे हिफाजत करता है, क्या उसने मर्दों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं औरत के बारे में। अक्सर मर्द हजरात इस आयत को तो बहुत उछालते हैं, देखा अल्लाह ने दो बीवियां, तीन और चार शादियों की, अब मैं एक और शादी कर लूंगा, लेकिन एक बीवी को भी कैसे रखना है वो नहीं सीखते कि कुरान क्या बताता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मर्द या औरत को ये बातें पता होंगी जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अनलेस उन्होंने कुरान सीखा हो, उसके अलावा मैंने नहीं आम लोगों के अंदर इस चीज का चर्चा सुना। जैसे कि दो तीन चार शादियों का तो हर एक को पता है, किसी बच्चे को भी उठा के पूछ ले, लेकिन बीवी को रखना कैसे है, एक बीवी के साथ भी कैसे रहना है, ये भी तो अल्लाह ने कुरान में बताया, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है। इसी तरह एक ईमेल मेरे पास आई और उन्होंने बड़ा ये इतराज सा किया, उन्होंने कहा मेरा खामिद मुझे बुलाता है अपने पास लेकिन मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता। और क्या औरत का ये उसके ऊपर फर्ज है, क्या लाजिम है उसके ऊपर कि अपने शोहर का दिल ऐसे खुश करे अगर उसका दिल नहीं चाह रहा। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे क्या हमारी सेंस है, हम शादियां करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि औरत के क्या फराइज है और मर्द के क्या फराइज है, ये हम बिल्कुल इससे नाबलद हैं, बिल्कुल नहीं जानते, इसीलिए तो ऐसा सवाल आता है ना। तो औरतों को पता होना चाहिए कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनके क्या फराइज हैं और क्या चीजें ऑप्शनल हैं, ये पता होना चाहिए औरतों को, क्योंकि कयामत के दिन पूछ होगी इन फराइज की। और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ, ये हमने पढ़ा है ना 1, 2, 3 और 4 बीवियों का पिछले सबक में, तो आप ऐसा करिए, लिख लें अपने पास, आप ये सोचें कि अगर आपके शौहर की और भी 3 बीवियां होती और वो आपके पास सिर्फ चौथी रात गुजारने आता, 3 रातें उसने कहीं और गुजारनी होती, तो 4 चीजों में मैं उसके साथ कैसे होती, मैं क्या पहनती ओढ़ती जब उसने आना होता, मैं क्या खाने बनाती, कैसे खाने बनाती जब उसने आना होता, मैं घर को कैसा रखती जब उसने आना होता, और चौथा सवाल बहुत अहम है कि मेरा उसके साथ सलूक कैसा होता, बोलचाल कैसी होती, रवैया कैसा होता, क्या एटीट्यूड होता, क्या उसके साथ मैं जो बातचीत है या जो उसके साथ टाइम है वो कैसा स्पेंड करती, कैसे उसके साथ मैं मामला करती, कैसा मेरा सलूक होता उसके साथ, कैसा मेरा अखलाक होता उसके साथ, ये चौथा सवाल है। ठीक है, अब आपने इन 4 सवालों के जवाब ऑनेस्टली लिखने हैं और उसके बाद देखना है कि अगर अल्लाह ने मेरे शौहर को सारी जिंदगी मेरे लिए ही एक रख दिया है और उसके पास और कोई नहीं है, तो इसके बाद फिर मुझे कितना शुक्र अदा करना चाहिए, इसके बाद मुझे कितनी उसकी कदर करनी चाहिए, और फिर अगर क्या ऐसी चीज मेरे साथ होती कि सौकनों का मेरे ऊपर एक, यानी एक औरत के लिए बड़ी मुश्किल चीज है ना सौकन को बर्दाश्त करना, तो सौकनों का अगर अल्लाह ने मेरे ऊपर एक ये मुश्किल नहीं डाली तो, और मेरे शौहर को सिर्फ मेरे लिए ही रहने दिया, तो इसके बाद फिर मुझे क्या करना चाहिए, कैसा मेरा रवैया होना चाहिए, कैसा मेरा सलूक होना चाहिए, अपने जवाबों की ही रोशनी में देखें। लेकिन अब वो सिर्फ चूंकि मेरे लिए रह गया तो मुझे कोई कदर नहीं है, हाँ वो कहीं और 3 शादियां और उसने भी की होती तो फिर मुझे कितनी उसकी कदर होती, बजाय इसके कि हम इतनी कदर करें कि शुक्र है अल्लाह का ये ऐसा नहीं हुआ, हम उल्टा काम करते हैं, यही इस कदर ना कदरी करते हैं, ना शुक्री करते हैं, और हमारे रवैये कैसे होते हैं, तो ये चीज को सोचना चाहिए हमें। तो अब एक औरत का काम तो 4 के बराबर का हो गया ना, कि उसको जितना 4 ने करना था वो एक औरत को करना चाहिए, ठीक है, उतनी अवेलेबिलिटी उसको देनी चाहिए अपने शौहर को, उतना ही उसके साथ जैसा सलूक करना चाहिए। लेकिन मसला ये होता है जब मुकाबले हो रहे होते हैं ना तो फिर तो इंसान बड़ा आगे बढ़ बढ़ के करता है, जब मुकाबला ही कोई नहीं फिर चाहे सारे दिन गंदी मंदी बन के रहती रहे, चाहे जैसा भी सलूक करें, पता जो है कि मेरे पास ही आएगा और किसके पास जाना। तो ये चीजें सोचने की हैं, उन पे भी तदब्बर करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं आयत नंबर 12 से, आसान आयतें हैं, बहुत आसान है। पहली आयत जो है इसमें आपके पास एक टेबल खुल गया होगा, आपको लिंक मिल चुका होगा, उस टेबल को ओपन कर ले तो इंशाअल्लाह ताला ये आयत समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, और लिए तुम्हारे आधा है जो छोड़ा अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुल लहुन्न वलद, अगर ना हो उनके लिए औलाद। मर्द को कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए हाफ है जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा, बीवियों में से कोई भी फौत हो जाती है बीवी तो तुम्हारे लिए उसकी विरासत में से आधा हिस्सा है, लेकिन एक शर्त है, इल्लम यकुल लहुन्न वलद, अगर उनके कोई औलाद ना हो। फइन कान लहुन्न वलद, फिर अगर है उनके लिए औलाद, अगर उस औरत की जो तुम्हारी बीवी थी दुनिया से चली गई, अगर उसकी औलाद ही चाहे तुमसे है या किसी पहले शोहर से है, फलकुम रुबु मिम्मा तरकना मिम बादी वसीयति यूसीना बिहा औदैन, तो फिर तुम्हारे लिए रुबु है, 1/4 है, क्योंकि औलाद को भी तो मिलना है ना। अगर तो वो बे औलाद थी, कहीं से भी बे औलाद थी, पिछले शोहर से भी बे औलाद थी, इसके पास भी बे औलाद रही, तो फिर तो आधा इस शोहर को मिलेगा। लेकिन अगर वो औलाद वाली है तो फिर इस शोहर को, जिसके निकाह में वो इस वक्त है, उसको 1/4 मिलेगा। अब यहां से भी एक बात को समझें आप कि यानी शोहर तो उसका उसके मरने के बाद भी रहा, ऐसा नहीं है कि वो मरने के बाद वो गैर महरम हो गया, अब उसको देख नहीं सकते, तो फिर ये किसको कहा जा रहा है? मा तरका अज़वाजुकुम, जो तुम्हारी बीवियां छोड़ गई, वो तो मर गई, अब तो बीवी ही नहीं रही। तो ये जो कहते ना, और आगे मर्द भी अगर मर जाए तो उसके लिए भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो एक गलत बात मशहूर कर दी गई है कि शोहर फौत हो जाए तो औरत का उसके साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है, और अब वो उसका चेहरा भी नहीं देख सकती, चेहरा नहीं देख सकती, लेकिन उसका माल ले सकती है, विरासत ले सकती है। सोचने की बात है ना। तो ये ऐसी बातें नहीं उछालनी चाहिए। मिम्बादी वसीयत यू सीना भी है औदैन, मगर ये किसके बाद विरासत मिलेगी शोहर को, जबकि जो वसीयत है वो भी पूरी कर दी गई, और कोई कर्ज की अदायगी थी जो इस औरत के जिम्मे थी, वो भी पूरी कर्ज भी अदा कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि पहली चीज जो पूरी करनी होती है वो उस मरने वाले के माल से कफन दफन का इंतजाम, कब्र का इंतजाम, जैसे इन मुल्कों में ये भी काफी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर कोई और करना चाहे तो ऑप्शनल है, वो कर सकता है, उसकी नेकी है। लेकिन अगर नहीं, तो फिर उसी जो जाने वाला है उसी के माल में से करना चाहिए, कफन दफन का इंतजाम, कब्र का इंतजाम। उसके बाद नंबर 2 पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, जनाजे के मौके पर ये पूछा जाए कि किसी का कर्ज तो नहीं अदा करना इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे जिसके ऊपर कर्ज होता था? ये सोचें कितनी सीरियस बात है। और बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी हुकूमत अच्छी हो गई थी, जब जरा मुसलमानों के हालात सही हो गए थे, तो बैतुल माल में से उसको कर्ज अदा कर दिया जाता था। तो चाहिए कि उसके वारिस उसका कर्ज अदा करें। यहाँ पे होता ये है कि वारिस अपने लेके बैठ जाते हैं, जल्दी जल्दी बांट लिया उसको, उसके ऊपर कर्जा है नहीं है, वो जो मर्जी चाहे कोई कर्ज खा खड़े हुए हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर हमारे कर्ज हमसे लिया था इस बंदे ने या बंदी ने, और परवाह ही नहीं होती, नहीं देते। हालांकि आपको पता है कि उसकी शहीद भी हो, तो एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उसने कहा था या रसूलल्लाह अगर मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते मर जाऊं तो मेरे लिए क्या है? तो आपने फरमाया जन्नत। वो पलटा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर सिवाय कर्ज के, कि जिब्राईल अलैहि सलाम अभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये बात कही, कर्ज होगा तो जन्नत में एंट्री में रुकावट हो जाएगी शहीद की भी। तो रूह एक तरह से मुअल्लक रहती है कर्ज के साथ। तो जो वरसा है वो अपने मरने वालों पे रहम तो किया करें, वो बेचारे दुनिया से चले गए, वो तो नहीं अपना दे सकते थे, लेकिन वारिस तो दे दें। तो बड़ी बेरहमी हो जाती है, इसीलिए इंसान को अपनी जिंदगी में कर्ज से जितना बच सके उतना बचना चाहिए, अनलेस बहुत ही कोई मजबूरी हो, वरना कर्ज ना लें। अब जैसे घर वगैरह अगर कर्ज पे लिए हुए तो घर को बेचें और कर्जा अदा करें, नहीं तो वारिस उसके और प्रॉपर्टी जो है उसकी में से या उसके कैश जो पड़ा हुआ है बैंक में उससे कर्जा अदा करें। कोई भी यानी कर्ज अदा होना चाहिए जैसे भी है, नहीं तो और मुसलमानों में से भी कोई कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये भी एक नेकी होगी कि अपने किसी मुसलमान भाई दुनिया से चला गया, वो बेचारा नहीं आ सकता, वो आ सके तो आके कुछ कर ले अपने लिए। तो मुसलमानों में इतनी वो होनी चाहिए कि उसका कर्ज अदा करने, कहते हैं ना लोग के हम मैयत के लिए क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, भाई आप दुआएं तो करेंगे ही और भी चीजें जो भी आप सदका खैरात करते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कर्ज है तो वो भी अदा करें। और कर्ज माली कर्ज भी हो सकता है, ये भी कर्ज है कि अगर उसके रोजे रह गए ये भी एक कर्ज ही है उसके ऊपर, ये भी एक कर्ज ही है उसके ऊपर कि अगर उसने हज पे जाना था और उसने इसकी मन्नत मानी भी थी, तो ये भी एक एक तरह का कर्ज हो गया। तो ये चीजें भी पूरी करनी चाहिए। तो कर्ज की अदायगी के बाद फिर विरासत बटेगी, पहले पहले ना चीजें लेके बैठ जाया करो। وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور ان عورتوں کے لیے الربو ہے, کن کے لیے؟ مما ترکتم, اس میں سے جو چھوڑا تم نے, یعنی اگر تم خود فوت ہو جاتے, مردوں کو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تم فوت ہو جاتے ہو مردوں تو تمہاری عورتوں کے لیے پیچھے کیا ہے, 1/4 ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں. مثلا ایک آدمی کی 4 بیوی ہیں تو اس چاروں میں سے اس کی کوئی, بعض دفعہ ایسے ہوتا نا ایک سے شادی کی نہیں اولاد ہوئی, دوسری سے کی نہیں اولاد ہوئی, تیسری سے کی نہیں اولاد ہوئی, تو وہ ساری ہی بے اولاد ہیں. اب ان کو ان عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ 1/4 حصہ. اب وہ چاہے ایک ہے, ایک کا وہ 1/4 مل جائے گا, اگر تین بیٹھی ہوئی ہیں تو 1/4 ہی ملے گا, ہر ایک کو 1/4 نہیں ملے گا, 1/4 کے پورشنز کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ لیکن 1/4 نکالا جائے گا اس کی وراثت سے, تین کے لیے تین 1/4 نہیں نکالے جائیں گے, ایک نکال کے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, تو اگر تمہارے لیے اولاد ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو ان کے لیے, کن کے لیے؟ ان تمہاری بیویوں کے لیے, چاہے وہ ایک ہے چاہے ایک سے زیادہ ہے, ثُمُن ہے, 1/8 ہے, مِمَّا تَرَكْتُمْ, جو تم نے چھوڑا. اب اگر تمہاری اولاد ہے تو ظاہر ہے اولاد کو بھی ملنا ہے, تو اب بیویوں کے لیے کتنا ہے؟ 1/8. اب یہ بھی کیسے ہے, ایک ہے تو اس کو 1/8 مل جائے گا, ایک سے زیادہ ہے تو 1/8 کو ہی شیئر کریں گی وہ اکولی. ٹھیک ہے, من بعد وصیت ان توصون بها او دین, اس کے بعد کہ وصیت پوری کی جائے, وصیت اگر وہ کر کے گیا ہوا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, وصیت ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کر کے ہی جائے. اگر آپ کے نہیں کوئی چیز وصیت کرنا چاہتے, نہیں کریں آپ. ٹھیک ہے, وصیت تب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ چیز میں مثلا ہے کہ فلاں ادارے کو دے دوں یا فلاں میں جگہ پہ دے دوں میرے مرنے کے بعد ہی. اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو وارثوں کے لیے اللہ نے قانون دے دیا, اب آپ کو نہیں ضرورت ہے بیٹی کے لیے اتنا, بیٹے کے لیے اتنا, میں سمجھتی ہوں فلانے کو اتنا اپنا. ہاں غیر وارث جو ہیں, کوئی بھانجی ہے, کوئی بھتیجی ہے, ان کے حصے نہیں ہیں اس کے اندر, یا کوئی اور ایسی خالہ ہیں یا کوئی ماموں ہیں, کوئی مطلب ایسے لوگ جن کا میں ایک ویسے بات کہہ رہی ہوں کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں بن رہا. بعض دفعہ کوئی ایسے کزنز ہیں جو نہیں ان کے حصے بن رہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مدد ہو جائے, چلو ابھی میں اپنی زندگی کے اندر ان کا کرتی ہوں, میرے مرنے کے بعد بیچارے کیا کریں گے, ان کے حالات ایسے ہیں, تو ایک نیکی کے طور پہ چلو ان کو کچھ دے جاتی ہوں. تو پھر آپ وصیت لکھتے ہیں, اور لیکن وہ اپنی پوری جتنی آپ کی وراثت ہے اس میں 1/3 سے زیادہ ان کو نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں کہ میرا جو سارا ہے نا میرے بعد, بس وہ فلانی مسجد کو وقف کر دیا میں نے, فلاں ہسپتال کو میں نے دے دیا تو میرے پیچھے سے نیکیاں. نہیں, آپ صرف ہسپتالوں کو دینا ہے, مسجدوں کو دینا, آپ زندگی میں دے, آپ وصیت کے اندر لکھ کے نہیں جا سکتے کہ 1/3 سے زیادہ. اور یہ بھی آپ کر سکتے کہ کچھ بھی نہ کسی کو دیں, اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیں. اگر اتنا کم ہے آپ کے پاس تو ضروری نہیں ہے آپ نے اس میں وصیت بھی کر دی, وہ بےچارے وارثوں کو کیا ملے گا؟ مثلا کسی کا ایک ہی مکان ہے, ساری زندگی کا وہی بنایا ہوا ہے, ایک گاڑی ہے, ایک مکان ہے, اس کے 4 بچے ہیں, کیا ملے گا ان کو اس میں سے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے ساروں میں بٹ جائے گا. ایک آدمی اس کی بیوی بھی ہے, 4 بچے بھی ہیں, اب اوپر سے وہ وصیت بھی کر جا رہا ہے. تو اس طرح سے نہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وصیت کریں, مگر ہاں کسی نے کرنی ہے, کسی کو بہت ہی وہ ہے تو کر جائیں, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ بھی نیکی ہے, اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ محتاج نہ ہوں تمہارے بعد, کہ وہ بےچارے پھر قرضے وہ بھی لیتے رہیں, وہ بھی آگے قرض لے کے پھر چیزیں بنا رہے ہیں. جب تم اتنی پراپرٹی چھوڑ رہے ہو تو اس کو وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ, کم از کم وہ قرضہ لینے سے بچ جائیں گے کل کو. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر وصیتیں کر جاتے ہیں, یا پھر وراثتوں کے برے حال بٹتی ہی نہیں ہیں, بچے بھی قرضے لیتے رہتے ہیں, یا وہ اولاد میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے, ابھی جناب وراثت ہی نہیں بٹی, تو یہ حال ہوتا ہے. تو طرف تو ممبادی وصیت تو سونا بھی ہے او دین. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا ٹیبل میں سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا, اگر آدمی کی اولاد ہے تو پھر اس کو بیوی کو 1/4 ملے گا, سوری 1/8 ملے گا, اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا. آدمی کو کتنا ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے؟ 1/2 ملے گا. اب یہاں پہ عورتیں کہتی ہیں لو اس کو 1/2 مل رہا ہے, اور عورت اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو اس کو 1/4 مل رہا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, پھر آپ کو پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ बेटा बेटी है तो बेटे के दो हिस्से यानी दो औरतों के बराबर उसको हिस्सा मिलेगा, यानी दो हिस्से उसके और एक हिस्सा बेटी का। एक बेटा और एक बेटी है तो तीन हिस्से करेंगे, दो हिस्से बेटे को और एक हिस्सा बेटी को, ठीक है, इस तरह होगा। तो ये क्या बात हुई, ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी है, ये तो बड़ा ऐसे है वैसे। एक तो सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह के हुक्मों के ऊपर समझने की जरूर आप कोशिश करें, मगर एतराजात ना करें। क्यों? इन अल्लाह क्या ना अलीमन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। आप अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इल्म वाली नहीं है, ठीक है, कि जो हम अपने आप को समझे कि मेरी अकल बड़ी है, क्यों ऐसे किया, नहीं, ये तो नाइंसाफी। आपको ज्यादा पता है इंसाफ का कि अल्लाह को? अल्लाह अपनी मखलूक का ज्यादा हमदर्द है कि आप? अल्लाह ताला ने हर चीज को देख के कवानीन बनाए, किसी मेरी और आपकी मर्जी को देख के तो नहीं बनाने। तो सबसे पहली बात ये कि जहां पे भी आप ये देख रहे हैं, एक तो हर जगह ऐसा नहीं है कि औरत को हाफ ही मिलेगा और मर्द को, आप आगे देखेंगे इक्वल भी मिलता है, तो हर रिश्ते में नहीं है। नंबर टू बात ये कि देखें, औरत के ऊपर कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये याद रखें बात। और ये बातें मेरा ख्याल आज का लेक्चर अगर आदमी सुने तो ज्यादा बेहतर है, कि औरत के ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने नहीं डाली, आदमी पे डाल दिया। आदमी जब निकाह करता है तो बेसिकली वो इस चीज का एहद करता है कि इस औरत की तमाम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उसका मकान देना यानी रहाइश देनी उसको, उसका खाना पीना पहनना ओढ़ना, उसकी दवाइयां, उसका इलाज मुआलजा, वो तालीम ले रही है तो उसका खर्चा, उसकी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस आदमी पे की है। औरत अगर कमा रही है तो वो उसका है, और वो आदमी अगर उसको कहता है ठीक है कमा लो तो ठीक है, वो कमा ले, लेकिन वो उसकी अपनी है वो प्रॉपर्टी, वो आदमी के ऊपर खर्च करती है तो उसकी नेकी है, उसका एहसान है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। औरत नहीं कमाती तो इस वजह से आदमी नहीं उसको तलाक दे सकता कि तुम नहीं कमाती तो तुम्हें मैं तलाक। हाँ, मगर आदमी नहीं कमा के लाता तो औरत उससे तलाक मांग सकती, क्योंकि उसका हक है कि वो लेकर आए, ये हक है कि वो आदमी उस पर खर्च करे। अल्लाह ने कवाम बनाया आदमी को, आगे आप पढ़ेंगे सूरह निसा में और भी अहकाम आ रहे हैं कि इसलिए कि वो खर्च करते हैं, और खर्च ही ना करें तो आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, जब औरत पहले एक बेटी होती है, अब उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? उसके बाप पे है। उसकी शादी हो जाती है, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड पे है। खुदा ना खास्ता उसको कोई तलाक हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भाइयों पे है। और उधेड़ उम्र की हो जाती है, उस शौहर चलो नहीं कमा रहा या कुछ है ऐसी बात है या शौहर ने छोड़ दिया या फौत हो गया, तो तब उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बेटों पे है। अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके जो ससुराल है उनके ऊपर है, जो जो उसके देवर जेठ वगैरह उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेका भी नहीं है कोई भी उनके ऊपर। औरत को कहीं पे भी ऐसे नहीं छोड़ा गया कि चलो जाओ आप, ये वेस्ट नहीं है, जाओ जाके कमाओ और लेकर आओ और तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम भी तो घर में खाती हो। नहीं, इस्लाम ने तो नहीं ये कहा। तो ये तो हमने पता नहीं कहां से सीखे हैं, दूसरों से सीख के, और फिर उसके बाद आज हम पता है क्या बन गए, आधे तीतर आधे बटेर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस्लाम भी थोड़ा थोड़ा लेना है, साथ वेस्ट को भी कॉपी करना है, तो आज वो हमारा क्या मलबूबा सा बन के रह गया, किधर के भी नहीं रहे, एक को तो फॉलो करो, उधर गए तो फिर बेड़ा गर्क है औरतों का, तो फिर कमाओ भी, घर लाके सब पर खर्च भी करो, बच्चे भी पैदा करो, घर को भी देखो, सब करो। तो औरत की तो इसके अंदर मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन इस्लाम ने देखो कैसे कहा कि नहीं, किसी जगह औरत ने खर्च नहीं करना, मगर लेती हर जगह से, कहां कहां से ले रही है। मेहर औरत को मिलता है, दैट्स हर प्रॉपर्टी, उसके वालदेन भी नहीं रख सकते, उसके भाई नहीं रख सकते मेहर। नंबर टू, विरासत में उसको हिस्सा मिलता है, विरासत जो ये देखें आप सारे हिस्से देख रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी। नान नफका उसको मिलता है कि आदमी उसको उसके खर्चे का देता है। तो औरत तो यानी हर तरह से लेने वाली ही है ना, हर तरफ से ले रही है, खर्च उसने किसी पे नहीं करना, उसकी जिम्मेदारी कहीं नहीं, अपनी जिधर को मर्जी खर्च करे, वो उसका अपना शौक है, जहां मर्जी चाहे। तो आप मुझे बताएं इसके अंदर से कहां से ना इंसाफी हो गई। एक आदमी है तो अगर वो बाप है या शौहर है या बेटा है, उसने तो हर जगह ही खर्च करने हैं भाई, उसको तो मिलना ही चाहिए क्योंकि उसने देना ही है, इधर भी देना उधर भी देना उधर भी देना। तो इसलिए इस चीज को समझना चाहिए कि ये हिकमतें हैं इसके अंदर, और ये हिकमतें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये अहकामात है। इस चीज को अब से हम एक तो बात को कोई हमारे सामने ऐसी बात करे तो समझा दे कि देखो ये हिकमत है इसके अंदर। फिर आगे हम देखते हैं कलाला के बारे में। कलाला कौन होता है? जिसका बाप भी ना हो बेटा भी ना हो, ठीक है, माँ हो सकती है, हो सकता है उसकी माँ हो लेकिन बाप ना हो और बेटा भी ना हो। वह इनका ना रजुल यूरथ कलालतन अब इमरातुन, एक आदमी कलाला हो या औरत कलाला हो। वला हु अखुन, और उसके लिए एक भाई हो, एक और उख्तुन या एक बहन, उसकी सिर्फ एक भाई है या एक बहन है। और वो कौन से भाई या बहन है? जो माँ जाए हैं। माँ जाए कौन से होते हैं? इखियाफी। अखियाफी बहन भाई कौन से होते हैं? जिन माँ एक है बाप चाहे डिफरेंट है, बाप डिफरेंट है। अक्सर ऐसे बहन भाई जो अखियाफी होते हैं ना, उनमें बड़ी मोहब्बत होती है, इनकी माँ एक होती, इनके बाप एक हो और माए डिफरेंट हो ना, उनमें बड़ा सुतेलापन होता है। हालांकि ये भी सुतेले ही होते हैं लेकिन उनमें बड़ा सुतेलापन होते हैं, जहां पे माए अलग अलग होती हैं और बाप एक होता है। तो लेकिन जहां पे माँ एक होती है अक्सर देखा गया है, बाप चाहे मुख्तलिफ भी हो, इनको भी ये भी बहन भाई ही होते हैं, तो इनका भी हिस्सा है। ये वाले कौन से बहन भाई हैं? माँ जाए अखियाफी, फलिकुल्ली वाहिद मिनहुम सुदुस, तो उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। छठा हिस्सा यानी एक बहन है अगर किसी की, कलाला की एक बहन है या कलाला का सिर्फ एक भाई है, तो उन उस वो उसमें से चाहे एक बहन है उसको 1/6 मिलेगा, एक भाई है उसको 1/6 मिलेगा। देखें यहाँ पे इक्वल आ गया, यहाँ पे नहीं कहा गया कि बहन को 1/6 का भी आधा मिल जाएगा। इन कैनू अक्सर अमिन तालिका, तो अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो, यानी दो तीन बहन भाई हैं ये अखियाफी यानी माँ जाए, फहम शुरकाओ फिर सुलुस, तो वो एक तहाई में सब शरीक होंगे, यानी तकसीम होगा एक तहाई सब में। मिम बादी वसीयत यूसा बिहा औदैन, ये वसीयत के बाद जो वसीयत मरने वाले ने की उसकी तनफीज के बाद और दैन कर्ज की अदायगी के बाद। एक और बात यहाँ पे आ रही है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब आपका सवाल होंगे लेकिन फिर फलाने को कितना मिलेगा, फलां को कितना मिलेगा। तो देखें ये जो आयते हैं ना, ये पूरा इल्म विरासत है इनमें, ये छोटी बात नहीं है, इन्हीं आयतों से अहकामात निकलते हैं। तो ये एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये आपको बताए जाएं इतने अहकामात। मैंने एक साल लगा के और हर रोज ये सब्जेक्ट पढ़ा और फिर यानी इसकी तालीम ली, फिर जाके तो कुछ ये जहन के अंदर बैठा। तो ये अगर आप सोचते हैं कि एक क्लास में आपको आ जाएगा, तो एक क्लास में नहीं ये कवर हो सकता, ठीक है। ये बहुत बड़ा इल्म है और ये वो इल्म है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्मुल फराइज, और कुरान खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, ये इल्मुल फराइज है, ये फरीजा है ना, आपने पहले पढ़ा, ये फरीजा है। तो ये विरासत का इल्म मामूली बात नहीं, और ये इल्म बहुत सबसे पहले जो इल्म उठ जाएगा ना वो ये विरासत का इल्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इल्म है और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। और हकूक के बारे में, इससे अच्छे रहो उससे अच्छे रहो, ये तो सारे ही करते, लेकिन विरासत का जो हकूक है ये अदा करने, ये भी हकूक लिबाद में से है, ये पूरे करने, इसके ऊपर बहुत ही कम लोगों की तवज्जो होती है और इसका ज्यादा प्रचार भी नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब अदा करने के बाद फिर इन कलाला अगर है तो उसके बहन और भाइयों को इतना मिलेगा, लेकिन ये जो वसीयत है वो वसीयत इन यूसा भी हाद औ दैन या दैन है, गैरा मुदार होना चाहिए, नुकसान नहीं इसमें किसी को पहुंचना चाहिए। नुकसान कैसे पहुंचता है वसीयत में या दईन में? देखिए वसीयत में नुकसान ऐसे पहुंच सकता है कि कोई कह जाए कि जी फलां बच्चा है ना, मैंने इसको आग कर दिया, बस इसका मेरे साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, इसने मुझे बड़ा सताया, ये वसीयत कर दी जुल्म के ऊपर मबनी। किसी के ऊपर भी ज्यादती पे मत बनी, ठीक है? अब या अपनी जिंदगी में किसी एक वारिस को और ज्यादा देगा। इस बच्चे ने मेरी बड़ी खिदमत की है, इसने मुझे अपने पास रखा था, इसको इतना इतना दिया जाए, ये नहीं है। वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती। तो वसीयत के अंदर गड़बड़ कर जाना, वसीयत के अंदर किसी पे जुल्म और ज्यादती कर देना, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया, ये है जो जरर देने वाली वसीयत है। इसी तरह बाज दफा दयन के अंदर नुकसान वाली बात हो जाती है। और वो क्या है कि कोई खड़ा होके वैसे ही कह दे कि इसने मेरा कर्ज देना था, जबकि ऐसा नहीं था, या 1,000 देना था तो 10,000 बना के रख दे, या मरने वाला लिख के गया हुआ कि मैंने इतना कर्ज देना, और पीछे वाले जो है ना वो उसको कम कर दे, या वसीयत ही बदल दे, ये भी तो वसीयत में जरर पहुंचाना है ना। तो ये बातें वो नहीं है, कोई खेल तमाशे की बात नहीं है। तो गैर मुदार होना चाहिए, नुकसान ना देने वाला। वसीयत मीन अल्लाह, ये वसीयत है अल्लाह की तरफ से। और फिर से आया है क्या, वल्लाहु अलीम, अल्लाह ताला इल्म वाला है, उसका इल्म हर चीज का अहाता किए हुए, उसको जैसे हर चीज माइन्यूट डिटेल्स गहराई तक जो उसको इल्म है, हमें नहीं है, हम नहीं जानते, हम समझते हम किसी के बड़े हमदर्द है, अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि इसको कितना मिलना चाहिए। और वो हलीम है, हिल्म वाला है, बड़ा हौसले वाला, लोग इसमें इधर उधर करते भी हैं, अल्लाह ताला मोहलत देता है उनको, मोहलत देता है। और अगर वसीयत के अंदर कोई गलत वसीयत कर ही गया, तो ये नहीं बाद में कहना मेरी अम्मी जाते हुए ये कह गई थी, बस हमने तो ऐसे ही करना है। अगर अम्मी को नहीं समझती, नहीं उनको पता था, उनको इल्म नहीं था, तो आपको तो इल्म है, आप क्यों वो काम कर रहे हैं कि अम्मी ये कह गई थी, अम्मी कह गई थी मुझे फलां जगह जाके दफनाना। अब वो चाहे वो समुंदर पार जगह है, अब यहां से बॉडी उठा के लेके जा रहे हैं, वहीं पे दफनाना है। हालांकि दफनाने से नहीं कोई फर्क पड़ेगा, इंसान के अपने अमल हैं जो उसके साथ जाते हैं। आप मदीना में भी दफन हो जाए, लेकिन अगर अब्दुल्ला बिन उबई कहाँ दफन हुआ होगा, रईसुल मुनाफिकीन था ना, तो उसका दफन होना तो उसको नहीं बचा सकता। तो अपना ईमान देखें, अपने नेक आमाल देखें, सबसे पहले तवज्जो उन पे होनी चाहिए। अब इसी तरह और वसीयतें, कोई माँ बाप पास ऐसी जुल्म की वसीयतें कर जाते हैं, मेरे बाद फलाने से नहीं मिलना तुमने, मेरे बाद फलाने को नहीं आने देना, इस तरह की जुल्म वाली, तो उन वारिसों को चाहिए कि ऐसी वसीयतों पर अमल ना करें। अगर वो गलत वसीयत कर गया तो उस वसीयत को बदलने में कोई हर्ज नहीं, हमने सूरह बकरा में पढ़ा था। तो इसलिए ये मामला बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अब ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास कि जी अगर के ये इस तरह हो जाए तो फिर क्या होगा। मसलन कोई औरत कहती है कि अगर मेरा शौहर फौत हो जाए, बच्चे अभी छोटे हैं, मैं क्या करूं, क्या उनको सारा दे दूं, जायदादें दे दूं और विरासत बांट के बैठ जाऊं। तो देखें, अगर माँ ही उनकी गार्डियन है, और जो ज्यादातर आज तो यही होता है, चच्चा वगैरह कौन देखता है, माँ ही होती है जो बेवा औरत होती है, जो यतीम बच्चों की किफालत कर रही होती है। तो हमने पढ़ा है ना, बला तो सुफहा अम्वालकुम, अपने माल सुफहा को ना दे दो, बेवकूफों को ना दे दो, वो अभी ना बालिग है, उनको क्या अकल है। हाँ, जब वो बालिग होंगे और आप उनमें समझ बूझ देख लें तब उनको दें। तब तक आप जाहिर है घर का खर्चा चला रही हैं, तो उनके ऊपर ही स्पेंड कर रही हैं ना, ये उन्हीं का माल है, उन पे स्पेंड किया जा रहा है, एक्स्ट्रा बगैर ना हो उसके अंदर, उसमें से आप खुद, क्योंकि एक बेवा औरत है, वो कुछ भी नहीं करती, वो कोई उसका आमदन नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर तुम फकीर हो तो ले सकते हो उसमें से, लेकिन बिल मारूफ। ये देखे ना, आप पीछे आप जरा निकाले आयतें, तो इसके अंदर से आपको पता चलेगा कि सारे अहकाम आ गए हैं इसमें। वबतलुल यतामा वाली आयत के अंदर देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आप उनको आजमा लो और उनको देख लो, अगर तो वो इस काबिल हैं कि वो संभाल सकते हैं तो फिर तुम उनको हाथ में दे दो। आयत नंबर 6 में है, अगर वह मन का ना फकीर फलियाकुल बिलमारूफ, ठीक है? तो इस तरह से ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। वो औरत बच्चों की वेलबींग पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके सब पे खर्च कर रही है तो ठीक है। हाँ, उसमें अगर कोई और तीसरे का भी हिस्सा निकलता है, मसलन है उस आदमी के वालदैन का हिस्सा, वो जिंदा है, उनका हिस्सा निकलता है, तो फिर हाँ उनको देना पड़ेगा, उनको देंगे आप? अनलस वो उनको दे दिया, वो कहते नहीं हमने तो अपने यतीम इन्हीं को देना है, तो आप नहीं हम इसको देते, वो वापस कर देते हैं, वो उनकी मर्जी। लेकिन अदरवाइज उनका भी हिस्सा निकलेगा। अगर देखें, याद रखिए, अगर एक आदमी फौत हो जाता है और उसकी जिंदगी में उसके कोई वारिस थे, मिसाल के तौर पे उसके वालदैन जिंदा थे, उसके और जो भी थे वो जिंदा थे, उसके बेटे भी जिंदा थे, लेकिन जब वो फौत हुआ उसके बाद एक दिन बाद उसका बाप फौत हो गया, तो बाप की विरासत बनेगी तब भी, क्योंकि वो जब वो फौत हुआ था तो उसका बाप जिंदा था कि नहीं था। 10 साल बाद उसका एक बेटा फौत हो गया, जैसे आजकल हमारे हालात है, विरासत तो बांटनी ही नहीं है, वारिस मरते जाते हैं, विरासत नहीं बढ़ती, तो बेटा फौत हो गया, लेकिन इसका भी हिस्सा है, अगर उसकी कोई औलाद है तो उसको मिलेगा वो हिस्सा, क्योंकि आपने बांटी नहीं उस वक्त, टाइमली बांट देते तो वो अपनी जिंदगी के अंदर उससे कुछ कर लेता। होता ही है कि बेचारी औलाद रुलती रहती है, वो इधर उधर से जैसे मैंने कहा कर्जे पकड़ती है, क्या क्या करती है, लेकिन वो नहीं 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 हमने नहीं बांटनी, नहीं है हमने बांट ली तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। बाज दफा औरतें कहती हैं कि हमारे हाथ में क्या रहेगा, और हमने बांट ली तो हमारी तो अभी जिंदगी पड़ी हुई, तो हम क्यों बांटे, चाहे बच्चे जवान है चाहे वारिस सारे हैं, लेकिन हम क्यों दें, वो आठवां हिस्सा नहीं लेके बैठती, वो पूरा ले लेती। इसी तरह बाज दफा ये भी होता है कि बच्चे छोटे हैं, आदमी फौत हो गया, अब बेटियां ही हैं सिर्फ, अब बेटियों का हिस्सा बनता है औरत का, बेवा औरत का हिस्सा बनता है, और आदमी जो फौत हुआ उसके भाइयों का हिस्सा बनता है। अब ये औरत कहती नहीं मैं क्यों दूं, मेरे देवरों ने तो हमें पूछा नहीं, वो मेरे जेठ ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, मैंने तो नहीं देना ये उनको, तो इनका तो नहीं कुछ बनता, मेरी बेटियों को सारा मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं, उनका भी हिस्सा बनता है, उनको देना पड़ेगा, चाहे आपके कितने भी ग्रजेज हैं उनके साथ, आपके क्या हालात हैं, या आपको कौन कितना पसंद आता है या नहीं पसंद आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाज दफा ऐसे होता है कि एक औरत है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आदमी अगर अपनी जिंदगी में ये सोचे, ये बात को समझे कि अगर मैं चला जाता हूं दुनिया से, तो ये औरत जो रह जाएगी इस, ये किधर दर दर फिरती रहेगी, आठवां मेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं, आठवें में से इसको क्या मिलेगा, ये किधर अपना गुजारा करेगी, और आजकल जो हालात है कोई भी अपने पास नहीं रखता, तो इसका क्या बनेगा, तो अपनी जिंदगी में उसको कुछ गिफ्ट कर सकता है, जिंदगी में कोई भी किसी को गिफ्ट कोई भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। हस्बैंड ने अपनी बीवी को चाहे किंतार भी दे दिया, आगे आता है तोहफे के अंदर, वो चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी दे दी हो, तो अपनी जिंदगी में आदमियों को ऐसे करना चाहिए कि अगर उनको अपनी बीवियों का इतना ख्याल है, तो अपनी जिंदगी में कम से कम कोई मकान कोई कोई चीज उनके नाम कर दें, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके, अगर वो दुनिया से चला जाता है वो मोहताज ना हो। इसी तरह बाज दफा ये भी होता है, ये भी एक क्वेश्चन आया है, हाँ, कि अगर मिसाल के तौर पे एक औरत एक घर के अंदर रहती है और बच्चे भी हैं या बेटे घर के अंदर रह रहे हैं, और फिर बाकी कुछ बच्चे बाहर हैं और कुछ हैं, अब क्या करें, ये जो है घर बेचें और क्या सारों को बांट दिया जाए, और क्या नहीं, जरूरी नहीं होता, बेचना ही हल नहीं होता कि बस फौरी तौर पे हर चीज बेची जाए और हर चीज को किया जाए, ये नहीं बात कही जा रही, हम ये क्यों हर बात समझते हैं कि बेचना है फौरन। देखें अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन है तो सबके नाम उस चीज को लगा दिया जाए, मिसाल के तौर पे कोई एक फैक्ट्री है या कोई एक मकान है या कोई एक वो, उसको फिर सारे वारसों के नाम पे लगा दिया जाए कि जब भी बिकेगा तो चलो उनका भी नाम उसके अंदर है, उनको भी मिल ही जाएगा, मगर उनके नाम तो जरूर लगाया जाए ना। इसी तरह एक और सवाल है कि भाई अगर ज्वाइंट अकाउंट है, अब मर्द भी जॉब करता है औरत भी जॉब करती है, या चलो औरत जॉब नहीं भी करती, ज्वाइंट अकाउंट है, तो देखिए दो सूरतें इसके अंदर। नंबर 1 सूरत यह कि ज्वाइंट अकाउंट आदमी ने इसलिए रखा हुआ है कि जस्ट बाज दफा टैक्स बचाने के लिए कर देते हैं, बाज दफा या कोई प्रॉपर्टी बीवियों के नाम पे ले लेते हैं, उनको देने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि टैक्स बचे, तो सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो फिर औरत की प्रॉपर्टी नहीं होती। अनलेस आदमी कहे ये मैंने तुम्हें दे दिया, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, वो कहता चलो तेरे नाम पे ले लेता हूं, क्योंकि कल को पूछ गिछ होगी, हिसाब होगा, ये होगा वो होगा, तो कहीं ये ना हो कि मेरा मेरा पता कुछ हो, तो इसलिए बीवी के नाम पे लिया। तो समझ होती है हमें कि ये हमारे नाम पे ऐसे नहीं किया गया कि मुझे दे दिया है, ये इसलिए किया गया है कि आदमी के ऊपर ना कोई नाम आए, कभी किसी के नाम पे ले लेते हैं, किसी एक बच्चे के नाम पे ले लिया, किसी के नाम पे ले लिया, सिर्फ इसलिए कि बस आदमी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, तो फिर उसमें समझ होनी चाहिए, फिर वो आदमी की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है। दूसरी सूरत ये होती है कि ज्वाइंट अकाउंट इसलिए है कि मर्द औरत दोनों उसमें से तसर्रुफ कर सकें, दोनों उसमें से तुम भी निकाल सकती हो, मैं भी निकाल सकता हूं कभी जरूरत हो, लेकिन है वो मर्द का ही, नाम सिर्फ उसका इसलिए डाला हुआ कि यहाँ के कवानीन है, कहीं ये ना हो कि सारा गवर्नमेंट ले जाए मरने के बाद आदमी के, या कन्वीनियंस के लिए कि चलो औरत भी निकाल सकती है, मर्द भी निकाल सकता है पैसे, या कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो फिर कोई मुश्किल ना हो, वो भी फिर समझ है कि भाई आदमी का ही है, ठीक है। लेकिन अगर औरत भी कमाती है और आदमी भी कमाता है और एक ज्वाइंट अकाउंट रखा हुआ है और उसमें से पैसे जाते हैं, तो याद रखिए जिंदगी में ही ये जरूर एसेट्स का हिसाब होना चाहिए किसका क्या है, इसको ऐसे नहीं लूज छोड़ना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है इसमें जा रहे हैं, और इसका समझ होनी चाहिए कि औरत का जो इसमें जा रहा है वो कितने परसेंट है, आदमी का कितने परसेंट है। अगर घर का सारा खर्चा लेकिन आदमी कहता है मैं ही चलाऊंगा, तुम्हारा ठीक है इसमें पड़ा रहे लेकिन मैं ही चलाऊंगा, तुम्हारे पैसे से नहीं कुछ चलना, फिर समझ आती है कि इसमें जो कुछ भी है वो आदमी का भी है लेकिन उसका इतना परसेंट था, औरत का इतना परसेंट, ठीक है। तो ऐसे नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। और सवाल, अगर बाप की जिंदगी में बेटा फौत हो जाता है तो उसके बच्चों का उस दादा की विरासत में से हिस्सा नहीं बनता क्योंकि उनके बाप उनका फौत हो गया है। हाँ, दादा वसीयत कर सकता है कि मेरे पोतों को इतना मिले, क्योंकि जो देखें लिंक इमीडिएट को देखा जाएगा, फर्स्ट इमीडिएट लिंक क्या था, बेटा, बेटे का लिंक ही बीच में से टूट गया, तो अब दादा की विरासत वारिस नहीं बनेंगे पोते पोतियां। हाँ, वसीयत जरूर कर सकता है वो 1/3 में से, जैसे मैंने आपको कहा उनका जिस जो वारिस नहीं बनता उसके लिए वसीयत हो सकती है, वो कह जाए मेरे 1/3 ये इनको मिले, ठीक है। इसी तरह अगर एक आदमी फौत होता है उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो तब भी जो बच्चा पैदा होगा उसकी भी विरासत है, वहां मिला है उसकी पेट के बच्चे की भी विरासत है, इतना ये सेंसिटिव इशू है। इसी तरह कोई औरत अपनी बीवी को एक तलाक देता है या दो तलाक देता है, यानी रजई तलाक है, इद्दत चल रही है अभी, और वो आदमी फौत हो जाता है, अब क्या होगा, क्या इस औरत को विरासत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जबकि उसने रजई तलाक दी भी थी। मिलेगी इसको, इसलिए मिलेगी क्योंकि ये अभी इद्दत के अंदर है, अगर इद्दत खत्म हो चुकी होती फिर तो समझ आ जाता कि आदमी ने रखनी नहीं, लेकिन अभी रुजू का टाइम था। तो ये कुछ मसाइल हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए, बाकी ये है कि विरासत के इतनी सारी इसके अंदर चीजें हैं जो हम सबको समझने की, चलें ठीक है आपको कैलकुलेशन नहीं भी आती ना, लेकिन ये मोटी मोटी बातें जरूर समझ होनी चाहिए हर एक को, क्योंकि ये है वसीयत मिनल्ला फरीदा, देखें पिछली आयत में क्या अल्लाह तला ने फरमाया, फरीदा तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, ये अल्लाह ने ताकीदी हुक्म दिया तुम्हें, और फिर भी हम इसको समझे ही ना कुछ। आजकल आसानी बहुत है इस चीज में कि अगर आपको इस चीज का नहीं भी इल्म है तो ये जैसे जकात कैलकुलेटर है इसी तरह विरासत के भी कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे आप निकाल सकते हैं, मगर सारे रिश्ते फिर उसमें डाले हैं, अगर चचा है, भाई इतने हैं या बेटे इतने हैं, माँ बाप भी जिंदा हैं, जितने भी जिंदा हैं वारिस उस वक्त उन सब का डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा उसके अंदर से कि कितना किसका पोर्शन बनता है।